हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद आठवां अध्याय श्लोक संख्या 29। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगल आचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाय मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं, भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशास्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति, गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनम गौरंगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानो सूते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय हो। पहला स्कंद आठवां अध्याय, जिसका शीर्षक है कुंती महारानी द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। श्लोक नंबर 29। कुंती महारानी अत्यंत ही सुंदर प्रार्थना कर रही है भगवान से, कृपया मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। न वेद कश्चित् भगवन् शिक्षितम् तवेहमानस्य नृणां विडम्भनम् न यस्य कश्चित् दयितोऽस्ति कर्हि चेत् द्वेषश्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणाम् न वेद कश्चित् भगवश्चिकीर्षितम् तवेहमानस्य नृणां विडम्बनम् न यस्य कश्चित् दयितोऽस्ति कर्हि चेत् द्वेषश्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणाम् न वेद कश्चित् भगवश्चिकीर्षितम् तवेहमानस्य नृणां विडम्बनम् न यस्य कश्चित् दयितोऽस्ति कर्हि चेत् द्वेषश्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणाम् शब्दात् न वेद कश्चित् न मतलब नहीं वेद यानी जानता है कश्चित् यानी कोई भगवन हे भगवन चिकीर्षितम् लीलाएं तव आपकी इरहमानस्य अर्थात सांसारिक व्यक्तियों की भांति निर्णाम सामान्य लोगों का विडम्बनम भ्रामक न यस्य कश्चित् न मतलब कभी नहीं यस्य मतलब जिसका कश्चित् कोई दैत विशेष कृपा पात्र अस्ति है कहिचित् कहीं द्वेष यानी ईर्ष्या की वस्तु च तथा यस्मिन् जिसमें विषमा पक्षपात मति विचार निर्णाम मनुष्यों का अनुवाद हे भगवान आपकी दिव्य लीलाओं को कोई नहीं समझ सकता क्योंकि वे मानवीय प्रतीत होती हैं और अत्यंत ही भ्रामक हैं ना तो आपका कोई कृपा पात्र है ना ही कोई आपका द्वेष भाजन है अप्रिय है लोगों की यह कल्पना ही है कि आप पक्षपात करते हैं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय हो श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि भगवान पतित आत्माओं पर समान रूप से दयालु हैं वे किसी से शत्रुता नहीं रखते भगवान को मनुष्य समझने की धारणा ही भ्रामक है उनकी लीलाएं मनुष्य के ही सदृश प्रतीत होती हैं लेकिन वास्तव में वे होती हैं दिव्य और भौतिक कल्मष्य से सर्वथा रहित निसंदेह वे अपने शुद्ध भक्तों का पक्षपात करने वाले माने जाते हैं लेकिन वे कभी पक्षपात नहीं करते जिस प्रकार सूर्य किसी का पक्षपात नहीं करता सूर्य की किरणों से कभी कभी पत्थर भी बहुमूल्य बन जाते हैं जबकि एक अंधा व्यक्ति प्रचुर सूर्य प्रकाश में रहकर भी नहीं देख पाता अंधकार तथा प्रकाश दो विपरीत धारणाएं हैं लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि सूर्य पक्षपात पूर्वक किरणें बिखेरता है सूर्य की किरणें सबों के लिए खुली हैं लेकिन ग्राहकों की क्षमताएं भिन्न भिन्न हैं मूर्ख लोग सोचते हैं कि भगवत भक्ति तो विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए चाटुकारता है वस्तुतः भगवान की प्रेमा भक्ति में लगे शुद्ध भक्त व्यापारी नहीं है व्यापारी वर्ग धन के विनिमय में सेवा करता है लेकिन शुद्ध भक्त ऐसे विनिमय के लिए सेवा नहीं करता अतएव भगवान की कृपा का द्वार सबके लिए सदैव खुला रहता है। आर्थ तथा जरूरतमंद, जिज्ञासु या विचारक भगवान से किसी लाभ सिद्धि के लिए क्षणिक संबंध स्थापित करते हैं। कार्य सिद्ध हो जाने पर भगवान से नाता टूट जाता है। आर्थ यदि तनिक भी पवित्र होता है तो भगवान से छुटकारे के लिए प्रार्थनाएं करता है, लेकिन बहुधा जैसे ही उसके कष्ट दूर हो जाते हैं वह तुरंत ही भगवान से अपना संबंध विच्छेदित कर देता है। यद्यपि भगवान की कृपा का द्वार उसके लिए खुला रहता है, किंतु वह उससे कतराता है। शुद्ध तथा मिश्रित भक्त में यही अंतर है। जो लोग भगवान की सेवा के बिल्कुल विरुद्ध रहते हैं वे निष्कृष्ट अंधकार में माने जाते हैं। जो आवश्यकता के समय भगवान से प्रार्थना करते हैं वे कृपा के आंशिक भाजन हैं, और जो भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं वे भगवान की कृपा पूर्ण कृपा के भाजन हैं। भगवान की कृपा कृपा पात्र भाजन पर निर्भर करती है, यह परम कृपालु भगवान पर निर्भर नहीं करती। जब भगवान अपनी पूर्ण कृपामयी शक्ति द्वारा इस जगत में अवतरित होते हैं तो वे मनुष्य की भांति क्रीड़ा करते हैं। अतएव ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपने भक्तों का पक्षपात करते हैं, लेकिन यह तथ्य नहीं है। ऐसी पक्षपात की प्रतीत के बावजूद उनकी कृपा समान रूप से वितरित रहती है। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भगवान के समक्ष जितने भी व्यक्ति युद्ध में मरे उन सबको पात्रता को विचार किए बिना ही मुक्ति मिल गई, क्योंकि भगवान के समक्ष मृत्यु होने से मरने वाला जीव सभी कर्म फलों से शुद्ध हो जाता है और मरने वाले व्यक्ति को परम धाम में कहीं न कहीं स्थान मिल ही जाता है। यदि मनुष्य सूर्य किरणों के समक्ष बैठे तो उसे निश्चित रूप से ऊष्मा तथा परा बैंगनी किरणों का लाभ होता है। निष्कर्ष यह निकलता है कि भगवान कभी पक्षपात नहीं करते। सामान्य मनुष्य का यह सोचना गलत होगा कि वह पक्षपात करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरु तु वाचालं पंगुं लंघयति गिरां यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं। परम सौभाग्य है कि हम कुंती महारानी की इतनी सुंदर सुंदर प्रार्थनाओं को पढ़ने का हमें अवसर भगवान ने दिया है, और इन प्रार्थनाओं से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। हम एक बार फिर से स्टार्ट से इन प्रार्थनाओं को एक बार पढ़ेंगे ताकि हमें आज का श्लोक अच्छे से समझ में आए कि उनका पिछले श्लोकों से क्या रिलेशन है। सबसे पहले कुंती महारानी कहती हैं, कुंती उवाच नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृति परं अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितं मायाजवनिकाचन्नम् अज्ञादोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्य दरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्तियोग विधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धा तिचिरं शुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मोहुर्विपत्कणात् विशान्महात्म्ये पुरुषाददर्शनात् असत्सभाया वनवासकृच्छ्रुतः मृदे मृदिनेकमाह रथास्त्रतो द्रोण्यस्त्रतश्चास्म हरे विरक्षिता विपदः सन्तुता शाश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भवदर्शनं जन्मैश्वर्यश्रुता श्रीभिरीदमान मदः पुमान् नैवार्हत्यभिधातुं वै त्वामकिञ्चन गोचरम् नमो किञ्चन वित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये आत्मा रामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः मन्ये त्वां कालमीशानम् अनादि निधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मितः कलिः। यहाँ कुंती महारानी ने भगवान से कहा, समं चरन्तं सर्वत्र, भले ही संसारी बात को कहे कि आप मेरे पुत्रों का पक्षपात कर रहे हो, भले ही सब ऐसा सारे लोग ऐसा मानते हैं, परंतु समं चरन्तं सर्वत्र, आप किसी का पक्षपात नहीं करते, आप तो सबके साथ सम हो। भूतानां यन्मिथा कलि, और ये जो जीवों के मन में भगवान के लिए जो कला होता है कि ये वो ऐसे हैं, वो पक्षपात करते हैं, ये केवल उनके मन की बात होती है, यानी कि वो लोग ऐसा सोचते हैं, इसलिए उनको ऐसा दिखता है। तो मानो कृष्ण कहते हो कि ये दिखता ही तो है, ऐसा ही तो है कि जिस जो जो मेरी शरण में आते हैं, मैं उनका ही उद्धार करता हूँ। चाहे जितने भी अब तक अवतार हुए हैं, ये भी अवतार है भगवान का। अगर हम देखें तो उन्होंने अपने भक्तों के ऊपर ही विशेष कृपा की है, और जो भगवान के भक्त नहीं है उनके पास ऊपर तो भगवान ने कृपा नहीं की है। तो ये विषमता भले ही अभक्तों के द्वारा हो, उनकी तरफ से हो, लेकिन भगवान विषमता तो दिखा ही रहे हैं ना। तो यहाँ पर कुंती महारानी ने इस बात को बहुत ही सुंदर तरीके से बता रही है। कहती हैं, न वेद कश्चित भगवान श्रीकृष्णम, न वेद कश्चित, कोई भी नहीं जान सकता। वेद मतलब कोई जान ही नहीं सकता, कभी भी जान नहीं सकता क्या भगवान श्रीकृष्णम, कि वास्तव में आपका चिकित्सक क्या है, आपका उद्देश्य क्या है। कब तवी हमानस्य निर्णाम विडम्बनम, कि जब आप संसार में आकर मनुष्यों की तरह, विडम्बनम का मतलब होता है अनुकरण करना, अनुकरण मतलब उसकी नकल करना। अब जैसे अगर हम साधारण शब्दों में बोलें कि एक व्यक्ति कमर पर हाथ रख के खड़ा है तो दूसरा भी उसके सामने खड़ा होगा, वो भी कमर पे हाथ रखेगा। फिर थोड़ी देर के बाद वो ना अपने सर पे ऐसे खुजलाएगा तो वो भी उसको खुजला रहा है, वो फिर बाद में नोज पे हाथ रखेगा तो उसको, तो मतलब फिर जो पहला वाला बंदा है ना वो चिढ़ जाएगा ना कि ये क्या तरीका है, जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा करो। फिर वापस वो वैसे बोले ये क्या तरीका है जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा कर। तो ये होता है अनुकरण करना, मतलब नकल करना। तो यहाँ पर कुंती महारानी भगवान के बारे में बता रही हैं कि जो संसार में आते हैं तो भगवान नरणाम विडम्बना, वो भगवान जो है वो नर की नकल नहीं करते, वास्तव में नकल नहीं है, वास्तव में भगवान की नित्य लीला ऐसी है। जैसे संसार में आते हैं वो एक छोटे माखन के लिए रोते हैं, कभी दूध के लिए रोते हैं, यशोदा मैया की लाठी से डरते हैं, और एक माखन के थोड़े से कटोरे के लिए नाच कर दिखाते हैं, कभी सारथी बन जाते हैं तो कभी अपने मित्रों के द्वारा हार कर घोड़ा बन जाते हैं। इसी से भगवान लीलाएं करते हैं संसार में आकर। वास्तव में ये भगवान का नकल करना नहीं है, वास्तव में ओरिजिनली भगवान में ये नर लीला विद्यमान है। भगवान वास्तव में अपने ऐसा नहीं है, अगर इसको हम नकल करना कहेंगे ना कि वो मनुष्यों की नकल करते हैं, नरणाम विडम्बनम, अगर इनको एज इट इज लिया जाएगा तो श्रीपाद श्रीधर स्वामी के तात्पर्य को जिसको जीव गोस्वामी ने बहुत ज्यादा क्लियर किया है कि अगर हम इसको ऐसा कहेंगे कि भगवान ने मनुष्यों की नकल की है तो यहाँ पर ये समझ में आएगा कि वास्तव में भगवान की ऐसी कोई लीला हो ही नहीं सकती। लेकिन वास्तव में मनुष्यों की भगवान ने नकल नहीं की है, बल्कि भगवान ने मनुष्यों को ऐसा बनाया है कि वो भगवान की तरह आचरण कर सकते हैं, भगवान की तरह कार्य कर सकते हैं, भगवान की तरह हंस सकते हैं, रो सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं। यानी कि भगवान इन समस्त लीलाओं के द्वारा, उद्देश्य तो कुंती महारानी ये बता रही हैं यहाँ पर, उद्देश्य तो पहले ही बता दिया कि भगवान ये दिव्य लीलाएं इसलिए कर रहे हैं ताकि सामान्य जन को ये सब कुछ पता चले कि भगवान कितने सुलभ हैं, है ना, भगवान कितना आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। जैसे अगर भगवान ये लीला करके दिखा रहे हैं, यशोदा मैया का स्तनपान करते हैं, तो बताना चाहते हैं कि तुम भी मुझे यशोदा मैया की तरह प्रेम करो, मैं तुम्हारा भी स्तनपान करूंगा। कभी अपने मित्रों के साथ खेलते हैं तो कभी घोड़ा बन जाते हैं, हार जाते हैं, तो दिखा रहे हैं कि तुम भी इस तरह से अगर मेरा मित्र बनोगे तो मैं तुम्हारे साथ भी ऐसा व्यवहार करूंगा। कभी गोपियों के साथ प्रेम लीला, रास लीला रचाते हैं तो सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं ऐसा समर्पण करो तुम भी, तो मैं तुम्हारे साथ भी यह प्रेम का आदान प्रदान करूंगा। मगर कुंती महारानी यहाँ बता रही हैं, नवीद कश्चित् भगवान् शिकीर्षितम्, कि आपका वास्तविक उद्देश्य किसी को समझ में नहीं आता, इसलिए लोग आरोप लगाते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने वैसा क्यों किया। अब अनंत कोटि ब्रह्मांड के भगवान नायक हैं, जिनके संकल्प मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड चल रहे हैं, उनको कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। वो भगवान महाराज युधिष्ठिर से जब युद्ध के दिन में जब रात हो जाती थी, सब सो रहे होते हैं, तो युधिष्ठिर महाराज से साए साए करके बातें करते, बड़े भैया कल ऐसा करेंगे, कल सुबह सवेरे उठ के ये काम करना है, उसके बाद है ना ऐसे काम करेंगे, फिर वो ये करेंगे, उसके बाद ये कार्य कल करके रहना है, ऐसे करना है, मतलब प्लानिंग करते हैं। भगवान जिनकी संकल्प मात्र से पूरा ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, पालन होता है, फिर क्षय भी हो जाता है, वो आराम से सो रहे होते हैं और ऐसे कार्य कर रहे हैं यहाँ संसार में आकर, जैसे उनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ये कार्य करने के लिए। तो इसीलिए कुंती महारानी कह रही हैं, नवीद कश्चित् भगवान् शिकीर्षितम्, आपकी चिकीर्षितम को तो कोई समझ ही नहीं सकता, आप कैसे कार्य कर रहे हो। बाहर से तो ऐसा लगता है कि कोई उनका ना ही स्नेही है और ना ही कोई उनका द्वेष। ये थर्ड लाइन में भी कहती है, नयस्य कश्चित् दयितोऽसि कर्हिचित्, मतलब कोई भी उनका दयित्व नहीं है। दयित्व का मतलब होता है विशेष कृपा पात्र। कोई भी संसार में ऐसा नहीं है जिसको भगवान ने कृपा ये सोचा हो कि मैं खाली उसके ऊपर ही कृपा करूंगा, ऐसा नहीं है। नयस्य कश्चित् दयितोऽस्ति कर्हिचित्, इस ऐसा कभी भी नहीं है कि कोई खास तौर पे भगवान का कृपा पात्र हो, द्वेषी हो, ऐसा नहीं है। लेकिन द्वेषस्य यस्मिन् विषमा मतिर्नृणाम्, अर्थात द्वेषस्य यस्मिन् विषमा मतिर्नृणाम्, क्योंकि कृष्ण के संबंध में मनुष्य की मति विषम है। वो तो कृष्ण को यदि अपना शत्रु मानते हैं तो वो कृष्ण जो है वो उनको शत्रु दिखता है। यदि कृष्ण को अपना मित्र मानते हैं तो कृष्ण उनको अपना मित्र दिखता है। ये उनकी द्वेषस्य यस्मिन् विषमा मतिर्निर्णाम, क्योंकि हर एक मनुष्य की मति एक समान नहीं होती है। इस बात को तो सब जानते हैं। जैसे यहाँ पर हम अलग अलग लोग हैं, अलग अलग जगह एक ही जगह पर बैठकर यदि एक प्रवचन सुन रहे हैं तो उन सारे व्यक्तियों में उस प्रवचन का अलग प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उसकी मति अलग अलग होती है। तो वो उसको अलग तरीके से समझाता है। मुंडे मुंडे मतिर्भिणा, किसी न किसी बात पर किसी न किसी ओपिनियन ओपिनियन ऐसा होगा वो उससे भिन्न हो जाएगा, वो उससे भिन्न हो जाएगा। तो मतलब हूबहू एक जैसा दिमाग सबका एक जैसा नहीं होता। इसीलिए एक बिंदु पर सेट होना, कोई भी बात करते तो एक बिंदु पर सेट होना बहुत मुश्किल है। हर कोई हर किसी की तरह नहीं सोचता, सबका एक पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। इसी कुंती महारानी बता रही हैं, द्वेषस्य विषमा मति निर्मा, कि उनकी जो द्वेष होता है ना, द्वेष बुद्धि होती है ना भगवान में, इसलिए उनको ऐसा अलग अलग उनको दिखता है। लेकिन भगवान कभी किसी से ना पक्षपात करते। जैसे श्री प्रभुपाद जी ने अत्यंत ही सुंदर एग्जाम्पल दी है सूर्य की, कि जिस प्रकार सूर्य किसी का पक्षपात नहीं करता। सूर्य की किरणें कभी कभी पत्थर को भी बहुमूल्य बना देती है, जबकि एक अंधा व्यक्ति प्रचुर सूर्य प्रकाश में रहकर भी नहीं देख सकता। अब क्यों नहीं देख सकता? क्योंकि उसके अंदर क्षमता नहीं है। सूर्य ने अपने प्रकाश को कम नहीं किया, उसने अपनी किरणों को कम नहीं किया, लेकिन अंधकार के कारण उसकी, क्योंकि उसकी ग्रहण करने की शक्ति इतनी कम है कि वो सूर्य के प्रकाश को ग्रहण नहीं कर रहा। सूर्य की किरणें सबों के लिए खुली हैं, लेकिन ग्राहकों की क्षमता भिन्न भिन्न है ना। सूर्य ने तो कभी भी किसी को नहीं कहा कि तुम्हारे सामने मैं प्रकट नहीं होऊंगा, या तुम्हारे नेत्रों से मैं नहीं दिखाऊंगा, तुम्हारे नेत्रों को प्रकाश प्रदान नहीं करूंगा। लेकिन उसके कर्म ऐसे हैं, उसकी उसका नसीब ऐसा है कि वो सूर्य की किरणों से बिल्कुल भी फायदा नहीं, लाभ नहीं ले सक रहा है। अभी भी अगर हम देखें तो हर एक व्यक्ति भगवान के साथ एक अलग तरीका का व्यवहार करता है। अब एक व्यक्ति सोचता है, देखता है भगवान को, समझता है कि वो निराकार है, भगवान का कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, कोई वास्तविकता नहीं, तो फिर भगवान उसके सामने वैसा ही हो जाता है। अब देखें, अगर भगवान के विषय में कहें तो भगवान ने तो आज भी साफ साफ लिख दिया, मन्मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि। मैं तुमसे सत्य कह रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। यदि तुम मेरा अपने मन में मेरे बारे में विचार करोगे तो फिर तुम अवश्य मेरे धाम में आओगे, मेरी कृपा प्राप्त करोगे। साफ साफ इसलिए ये आदेश सबके लिए, किसी खास व्यक्ति के लिए भगवान ने रिजर्व करके नहीं रखा है इस भगवद गीता को। भगवान ने तो सबके लिए क्या कहा है, क्या कहा? मन मना भव मद भक्तो, मन में केवल मेरा स्मरण करो, मेरे भक्त बनो, मध्या जी मेरी पूजा करो, माँ नमस्कुरु मुझे नमस्कार करो। लेकिन उनके विषय में लोगों की मति भिन्न भिन्न है। कोई कहता है भगवान निराकार है, कोई कहता है भगवान ये है, कोई कहता है भगवान वो है। अब भगवान ने कह दिया कि मैं तुमसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। तो सिर्फ उनके लिए नहीं कहा है जो कि है ना भगवद गीता नहीं पढ़ रहे, भगवान ने सबके लिए कहा है कि यदि आप मेरी भक्ति करोगे तो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें अपने धाम में वापस ले लूंगा। लेकिन क्योंकि वो भगवद गीता के अनुसार भगवान की बात मान ही नहीं रहे हैं, तो फिर भगवान जाहिर सी बात है उनको अपने धाम में कैसे बुलाएंगे। मतलब भगवान की कृपा सबके लिए, भगवान किसी से भी पक्षपात नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं भगवान केवल उनके लिए उनका पक्षपात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अब भगवान के पास आप किस प्रयोजन से जा रहे हो, यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद जी ने बताया आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी, ये सब भगवान की शरण में जाते हैं। लेकिन जो आर्त होते हैं दुखी होते हैं वो जाते हैं भगवान की शरण में, बोलते हैं भगवान कृपा करके मेरा दुख दूर कर दीजिए। तो फिर कुछ समय के बाद क्योंकि भगवान उनका दुख दूर कर देते हैं, फिर वो भगवान से संबंध निर्माण नहीं करते, बस भगवान हो गया मेरा काम, अब जो हिसाब किताब था ना मैंने तुम्हारी भक्ति की, भक्ति के बदले में तुमने मुझे दुखों से छुटकारा दे दिया, बस जान अब भी हमारा हिसाब किताब पूरा हो गया, अब मेरा तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं है। उसी तरह से जिस जिस दुख को लेकर या धन प्राप्त करने के यदि कोई भगवान के पास जाता है तो भगवान कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा धन चाहिए, और धन प्राप्त करने के बाद बस फिर हो गया मेरा काम। ऐसा यदि संबंध निर्माण नहीं करेंगे तो फिर वास्तव में भगवान भगवान की कृपा के द्वार सबके लिए खुले हैं, लेकिन जो जितना कृपा का पात्र लेकर आता है ना, अपने जिसका पात्र जितना बड़ा होता है उसको कृपा भी उतनी मिलती है। यानी कि जो भगवान की सेवा के बिल्कुल खिलाफ होते हैं, विरुद्ध होते हैं, उनको तो भगवान की कृपा दिखती नहीं है। अगर उन पर भगवान ने, हालांकि उन्हें भी भगवान सूर्य प्रकाश देते हैं, उन्हें भी भगवान वायु प्रदान करते हैं, वो भी अग्नि वर्षा हर चीज से भगवान की दी हुई अनाज सब्जियां फल हर चीज से वो भगवान की लाभ ले रहे हैं, लेकिन वो भगवान के बिल्कुल खिलाफ है, उनको दिखता ही नहीं है भगवान की कृपा। हालांकि यह शरीर जैसे हमने पहले पढ़ा, हमने पढ़ा कि ये सब कुछ जो भी हमारे पास है, यह शरीर भगवान की अपरा प्रकृति से बना हुआ है, आत्मा भगवान की पराशक्ति है, ये सब भगवान ने ही प्रदान किया है। लेकिन अब कोई भगवान की सत्ता को मान ही नहीं रहा है तो फिर वे सदैव अंधकार में जाने जाते हैं। और दूसरे नंबर पे आते हैं जो आवश्यकता के समय भगवान से प्रार्थना करते हैं, वे कृपा के आंशिक भाजन हैं। थोड़ी देर के लिए उन पर कृपा होती है और फिर वो भगवान की कृपा प्राप्त करके फिर भगवान को भूल जाते हैं, लेकिन वास्तव में भगवान की सेवा में जो निरंतर लगे रहते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, वही पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकते हैं भगवान की। भगवान स्वयं किसी के लिए भी ऐसा नहीं कहते कि भाई ये व्यक्ति मेरी कृपा का पात्र नहीं है, भगवान सब पे कृपा करते हैं। और ये बात तो शत्रु भी मानते हैं, भगवान के जो राक्षस होते हैं ना वो भी इस बात को मानते हैं कि विष्णु समदृष्टि है। पहले ऐसा कहते थे, जैसे हिरण्याक्ष की जब मृत्यु हुई थी, जब भगवान ने वराह अवतार लिया था, तो उस समय हिरण्याक्ष को कहते हैं कि ये विष्णु पहले तो समदृष्टि था, वो किसी के साथ भी पक्षपात नहीं करता था, किसी के साथ द्वेष नहीं करता था, लेकिन जब से इंद्र आदि देवताओं ने उसकी आराधना शुरू कर दी है तब से ये सुअर आदि रूप बनाना शुरू करके हम असुरों को कष्ट दे रहा है। तो वो कहते हैं अब मैं बताऊंगा उसको, हिरण्यकश्यप वास्तव में भगवान का पार्षद था। वैकुंठ जगत का कोई भी पार्षद इस संसार में जब आता है तो उसके पास बहुत अत्यंत ही शक्तिशाली होता है। जैसे रावण के विषय में कहा जाता है कि संपूर्ण देवताओं को उन्होंने बंदी बना दिया था, और उसी तरह से हिरण्यकश्यप भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, इसलिए उन्होंने इतने हजारों साल तक तपस्या की। वे भगवान के साथ लीला करने के लिए इस जगत में आते हैं, और वैकुंठ जगत के प्राणियों में इतना बल होता है, इतनी शक्ति होती है, इतना ज्ञान होता है। तो उसने क्या किया था, हिरण्यकश्यप जब संसार में आया तो उसने सृष्टि का सारा नियम ही बदल लिया था। जो ब्रह्मा जी ने बनाया है ना सारे नियम, वो उसने बदल दिए थे। उसने एक नियम ये भी बनाया था कि जो इस संसार में तपस्या करेगा, बहुत ज्यादा कठोर तपस्या करेगा, उसको नरक भोगना पड़ेगा। और जो इस संसार में बहुत ज्यादा भोग विलास करेंगे, शराब पिएंगे, उनको स्वर्ग में भेज दिया जाएगा। स्वयं फिर उसके ये सारे रूल्स, इतना उसने संसार को ऐसे उल्टा, उसके सारे नियम जो बना दिए थे, तो उसको मारने के लिए भगवान को स्वयं आना पड़ा था नरसिंह बनकर। तो यहाँ पर ये देखा जाता है भगवान के हर स्वरूप में विषमता दिखती है। जैसे समुद्र मंथन में जब मोहिनी बनकर आए, तभी भी उन्होंने क्या किया, देवताओं को अमृत पिला दिया और असुरों को सीधा पानी पिला दिया। राम बनकर आए तो फिर रावण को मृत्यु दी और फिर विभीषण को लंका का राज्य। अब यहाँ पर विभीषण जब भगवान के पास आए थे, तब वो भी तो रावण के ही भाई थे ना। कृपा के लिए भगवान ने दरवाजे बंद नहीं किए थे। जब विभीषण पहली बार भगवान के पास आ रहे थे, तब किसी ने ये नहीं कहा कि विभीषण जी आए हैं। सब यही कह रहे थे कि आया मिलन दशानन भाई, कि दशानन रावण का भाई है। अब ये शब्द बोलना देखो कैसा घृणित लग रहा है कि देखो रावण का भाई आया, यानी कि रावण का भाई आया तो रावण के जैसा ही होगा ना। तो भगवान ने मंत्रणा की सुग्रीव इत्यादि, क्योंकि भगवान के मित्र थे, उनसे पूछा कि आपके ख्याल में क्यों आया होगा। तो सुग्रीव ने कहा, जाहिर सी बात है, आया है तो क्यों आया होगा, भेद हमारा लेने सठ आया, कि हमारा भेद लेने आया है कि हमारी कितनी सेना है, हम किस तरह से योजना बना रहे हैं, तो इसीलिए इसको पकड़ कर बंदी बना देना चाहिए। इसको अगर हम छोड़ देंगे तो ये जाके वहां पर सारा हमारा भेद बता देगा, इसलिए इसको बंदी बना दो। परंतु श्री राम ने कहा, नहीं, पहले पता लगाओ कि ये आया क्यों है, क्या वास्तव में ये हमारा भेद लेने के लिए आया है, या ये भयभीत होकर शरणागत होने के लिए आया है। यदि भयभीत होकर शरणागत होने के लिए आया है, तो मैं जैसे अपने प्राण की रक्षा करता हूँ, वैसे ही उसके प्राण की रक्षा करूंगा। भगवान ने कहाँ भेद किया, भगवान ने कहाँ पक्षपात किया, वो रावण का भाई भी आया। और इस तरह से जब सुग्रीव ने सुना तो वो बहुत ज्यादा रंज हुए, बोला ये कोई तरीका नहीं है कि विपक्षी शत्रुओं में से कोई भी आएगा, आप उसको शरण दे दोगे, तो इस तरह से हमें बहुत ज्यादा खतरा हो जाएगा ना हमारी सेना को, वो लोग तो कुछ भी उल्टा सीधा कर सकते हैं, हमारी सेना की हानि भी क्रिएट कर सकते हैं। तो भगवान ने कहा, खतरा क्या है, मुझे इन राक्षसों से तनिक भी भय नहीं है, और मुझे इतना पता है कि यदि लक्ष्मण को मैं एक इशारा करूं तो वो केवल एक क्षण में ही उन समस्त राक्षसों को सफाया कर सकते हैं। मुझे इनसे कोई डर नहीं है, यदि ये मेरी शरण में आया है तो मैं इसे लंका का राजा बना दूंगा, यानी कि मैं इसे शरणागत, खाली उसको शरणागत अभयदान नहीं दूंगा, बल्कि उस रावण से लंका का राज्य लेकर इसको दे दूंगा। तब सुग्रीव ने कहा कि हाँ ठीक है, आप इसको तो लंका का राज्य बना दोगे, और कल यदि रावण आपकी शरण में आ जाएगा तो क्या करोगे। तब भगवान ने कहा, उसे भी राजा बना दूंगा। बोला, फिर कैसे राजा बना दोगे। बोला, मेरे पास एक राज्य थोड़े है, रावण अगर मेरी शरण में आ जाएगा तो मैं उसे अयोध्या का राजा बना दूंगा। भगवान कहीं विषमता नहीं रखते, हमारी अपनी विषमता है कि हम भगवान की शरण में नहीं जाना चाहते। जो भगवान की शरण में जाते हैं तो भगवान उसे अपनाते ही हैं अवश्य। तो यदि कोई कहता है कि भगवान अपने भक्तों का पक्षपात करते हैं, तो ऐसा पक्षपात की प्रतीति होने के बावजूद भी उनकी कृपा समान रूप से वितरित होती है। जैसे यदि मनुष्य सूर्य की किरणों के समक्ष बैठेगा तो अवश्य उसे उष्मा और किरणें का लाभ होगा, उसी प्रकार यदि हम भगवान के संपर्क में आएंगे तो अवश्य भगवान की कृपा प्राप्त होगी। निष्कर्ष निकलता है कि भगवान कभी पक्षपात नहीं करते। सामान्य मनुष्य का यह सोचना गलत होता है कि भगवान पक्षपात करते हैं। इसीलिए कुंती महारानी कहती हैं, न वेद कश्चि भगवान शिखेषितम् तवे हमानस्य निर्णाम विडम्बनम्, कि जब आप मनुष्य संसार में मनुष्य लीला करते हो और मनुष्यों की तरह आचरण करते हो। वास्तव में भगवान की लीलाएं दिव्य होती है। भगवान कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम। भले ही कोई भगवान को की इन लीलाओं को, क्योंकि हमारी बुद्धि भौतिक है ना, आध्यात्मिक बात को आध्यात्मिक लीला को समझ नहीं पाती, इसलिए भले ही हमें हमारी बुद्धि समझ में नहीं आती है, इसलिए हम भगवान को न वेद कश्चित भगवान के चिकित्सितम को नहीं जानते। भगवान का चिकित्सित, भगवान का उद्देश्य केवल जीवों के ऊपर कृपा करना है। इस संसार में आकर भगवान की, यदि वो भगवान कहते भी हैं परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृतम, तो ये जो परित्राणाय साधु नाम होता है तो साधुओं की रक्षा कर रहे हैं, विनाशाय च दुष्कृतम ये भी उनके ऊपर कृपा ही है। अगर भगवान साधुओं का नाश करते हैं, सॉरी साधुओं के ऊपर कृपा करते हैं, दुष्टों का विनाश करने में ही उनके ऊपर कृपा है, क्योंकि जब दुष्ट वैसे तो भगवान की भक्ति कर नहीं सकेंगे, तो जाहिर सी बात है भक्ति नहीं करेंगे तो उन्हें कभी भी जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा नहीं मिलेगा। तो भगवान स्वयं आते हैं कि बेटा तुम भी मेरी कृपा प्राप्त करो, मैं तुम्हारा विनाश करके तुम्हें अपने धाम में जगा दे दूंगा, तुम्हारा विनाश करके तुम्हारी मुक्ति करा दूंगा, और अपने भक्तों को तो भगवान संरक्षण प्रदान करते हैं। इसलिए कुंती महारानी कहती हैं कि आपकी इन लीलाओं को कोई भी समझ नहीं सकता, नयस्य कश्चित दैतोस्ति कहचित, आपका कोई प्रिय नहीं है और ना ही द्वेषश्च यस्मिन विषमा मतिर निर्णाम, आपका कोई द्वेषी भी नहीं है। लेकिन क्योंकि जीवों की मति भिन्न होती है, इसलिए उनको ऐसा लगता है भ्रमिक है, आपकी जो लीलाएं हैं वो इतनी इतना भ्रम कर देती हैं, भ्रम उत्पन्न कर देती हैं हमारे जीवन में, हमें ऐसा लगता है कि आप कितना पक्षपात कर रहे हो, परंतु आपका तो ना कोई शत्रु है और ना ही कोई कृपा पात्र है, सब लोगों के ऊपर आप समदृष्टि रखते हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरि बोल।